नमस्कार भारत, तारीख 24 सितंबर, दिन रविवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान पर साधा निशाना।
भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छेड़खानी के खिलाफ छात्राओं का आंदोलन हुआ उग्र, छात्राओं का धरना अभी भी जारी।
बीएचयू के अंदर 5 बजे के बाद रात मान ली जाती है, ये एक दिन की कोई बात नहीं। यहाँ बैठी जितनी भी लड़कियाँ हैं वो इस तरह के हरासमेंट हर रोज सहती है, हर रोज।
जर्मनी में आज चुनाव, एंगेला मर्केल चौथी बार चांसलर पद के लिए मैदान में। कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को निशाने पर लिया है। अपने संबोधन में सुषमा स्वराज ने कहा है कि एक ओर भारत जहां गरीबी से लड़ रहा है, वहीं पाकिस्तान भारत से लड़ रहा है। सुषमा ने यह भी कहा कि आतंकवाद को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में छेड़खानी के खिलाफ छात्राओं का आंदोलन उग्र हो गया है। शनिवार देर शाम पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को धरना स्थल से हटाया, जिसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। कई वाहनों को आग लगा दी गई है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अमरीकी वायुसेना ने उत्तर कोरिया के पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमानों की निगरानी में बम वर्षक विमान B-1B उड़ाए हैं। अमरीकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक बयान जारी कर कहा है कि 21वीं सदी में ये अमरीकी विमानों की उत्तर कोरिया के सबसे नज़दीक से उड़ाने थीं। पेंटागन की प्रवक्ता डाना वाइट ने कहा है कि ये अभियान उत्तर कोरिया से सैन्य ताकत से निपटने के अमरीकी संकल्प का प्रदर्शन था। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री योंग हो ने राष्ट्रपति ट्रंप को मानसिक रूप से बीमार कहा है। ट्रंप पर ताकत के प्रति आत्ममुग्ध होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी उत्तर कोरिया को बर्बाद करने की धमकियों ने उत्तर कोरियाई रॉकेटों के अमरीका पहुंचने को अनिवार्य कर दिया है। री योंग ही ने कहा कि यह सोचना बेकार है कि उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के दबाव में अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर देगा। अपने देश के परमाणु कार्यक्रम का बचाव करते हुए री योंग हो ने कहा,
उरे गुक्का हैंग मुर्योगन छल्टू छल्मी मीगुगे हैग वियोबल कुचंग नेगो।
हमारी राष्ट्रीय परमाणु शक्ति का मकसद अमरीका की ओर से परमाणु युद्ध के खतरे पर अंकुश लगाना है और अपने देश पर सैन्य आक्रमण को रोकना है, और हमारा अंतिम लक्ष्य अमरीका के साथ शक्ति संतुलन स्थापित करना है। ये थे उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री के शब्द। ईरान के कामयाब मिसाइल परीक्षण करने के कुछ घंटे बाद ही अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर उत्तर कोरिया के साथ मिलकर काम करने के आरोप लगाए हैं। ईरान ने शनिवार को मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था। ट्रंप ने एक ट्वीट कर कहा कि ईरान की मिसाइल इसराइल तक पहुंच सकती है। उन्होंने 2015 में ईरान और विश्व के ताकतवर देशों के बीच हुए परमाणु समझौते की आलोचना भी की है। ईरान का कहना है कि उसकी मिसाइल तकनीक पूर्ण रूप से रक्षात्मक है और ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नहीं हैं। मैक्सिको में शनिवार को आए एक भूकंप के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। 4 दिन पहले मैक्सिको में आए एक भूकंप से भारी तबाही हुई थी और 300 से अधिक लोग मारे गए थे। शनिवार को आए 6.1 तीव्रता के भूकंप के बाद लोग सड़कों पर निकल आए। हालांकि इस भूकंप के बाद जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने और झटके आने की चेतावनी देते हुए लोगों से आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। ये बीते 3 सप्ताह में मैक्सिको में आया 3रा बड़ा भूकंप था। कैरिबिया में अमरीकी क्षेत्र पुएर्टो रिको के गवर्नर का कहना है कि चक्रवात मारिया की वजह से बांध में दरार आने के बाद अब भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने के बाद गवर्नर ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र के सभी 70,000 निवासियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए जाने की जरूरत है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि समाचारों में आपने सुना, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन में बोलते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा है। सुषमा स्वराज ने जोर देकर कहा, पाकिस्तान जो पैसे आतंकवाद पर खर्च करता है उसे लोगों की तरक्की पर करे, ऐसा करना दुनिया व पाकिस्तान दोनों के हक में होगा। इससे पहले बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। अपने भाषण में उन्होंने कश्मीर में भारत पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए थे। सुनिए क्या कुछ कहा सुषमा स्वराज ने सलीम रिजवी की इस रिपोर्ट में।
भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 72वें अधिवेशन में पाकिस्तान द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का बारी बारी से जवाब दिया।
हम तो गरीबी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है। परसों इसी मंच से बोलते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने का गुनहगार भी बताया, पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोपी भी, जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवाता है, वो यहाँ खड़ा होकर हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा था। वो यहाँ खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्तावों की बात भी कर रहे थे, पर क्या उन्हें याद नहीं कि शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के अंतर्गत हम दोनों देशों ने यह निर्णय किया है कि हम आपसी मसलों को इकट्ठे बैठ करके हल करेंगे, किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे।
गुरुवार को यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। अपने भाषण में उन्होंने कश्मीर में भारत पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए थे। भारतीय विदेश मंत्री ने कुल 22 मिनट लंबे भाषण में से आधा समय पाकिस्तान पर ही केंद्रित रखा। भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के सियासतदानों को नसीहत भी दे डाली।
आज इस मंच से मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या कभी आपने इकट्ठे बैठकर ये सोचा है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसकी क्या वजह है कभी सोचा है आपने? हमने आईआईटीज बनाए, हमने आईएम्स बनाए, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए, पर पाकिस्तान वालों आपने क्या बनाया? आपने लश्कर ए तैयबा बनाया, आपने जैश ए मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। मैं कहना चाहूंगी पाकिस्तान वालों, जो पैसा आप आतंकवादियों की मदद के लिए खर्च कर रहे हो, अगर उसे अपने आवाम की भलाई के लिए खर्च करो, अगर अपने मुल्क की तरक्की के लिए खर्च करो, तो एक तो दुनिया का आतंकवाद से पीछा छूट जाएगा और साथ ही आपके आवाम का कल्याण हो सकेगा, आपके मुल्क का विकास हो सकेगा।
सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र को भी इस बात पर लताड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म का प्रस्ताव एक दशक से ज्यादा समय से लंबित है।
जब उस संकल्प को पूरा करने का समय आता है तो कुछ देश अपने अपने हितों को सामने रखकर फैसले लेते हैं। ये सिलसिला अनेक वर्षों से चल रहा है और यही कारण है कि 1996 में भारत द्वारा प्रस्तावित सीसीआईटी पर आज तक संयुक्त राष्ट्र निर्णय नहीं ले सका। सीसीआईटी की सभी धाराओं पर सहमति बन गई, अगर नहीं बनी सहमति तो एक धारा पर, और वो है आतंकवाद की परिभाषा।
भारतीय विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग एक बार फिर दोहराई और खासकर कहा, सुरक्षा परिषद में भी सुधार होना चाहिए। सुषमा स्वराज ने विश्व भर के देशों को यकीन दिलाया कि जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत पेरिस समझौते पर कायम है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से सलीम रिजवी।
तो सुषमा स्वराज ने अपने संबोधन में पाकिस्तान पर हमले किए और जमकर हमले किए, लेकिन सवाल ये कि क्या ये एक महज रस्म अदायगी है? मैंने विश्लेषण के लिए बात की अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान से और पूछा कि सुषमा स्वराज के इस भाषण को, उनके संबोधन को कैसे देखते हैं आप?
देखिए दो तीन चीजें हमको दिमाग में रखनी चाहिए उनकी तकरीर समझने के लिए। एक तो वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के तकरीबन एक दिन के बाद वो तकरीर कर रही थी, तो लाजमी बात है कि वो जो एलिगेशंस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया पे लगाए कि इंडिया टेररिस्ट मुल्क है और कश्मीर में वगैरह वगैरह जो हो रहा है, तो शी रिएक्टेड टू दैट, एक वो चीज है। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने आपने गौर किया होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर अंग्रेजी में की, सुषमा स्वराज ने हिंदी में की। एक तो है कि ये तो नेशनलिस्ट फेवर की वजह से होता है, दूसरी चीज ये है कि एटलीस्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मैसेज ये था कि मैं सारी दुनिया से बात करने आया हूँ, और सुषमा स्वराज कह रही थी मैं तो इंडियन से बात करने आई हूँ, आप चाहे तो सुन ले मेरी बात या ना सुन ले, ये एक मैसेज जरूर जाता है। आपने अर्दोगान की तकरीर में भी देखा है कि उनके सारे तकरीर अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी के लिए था, लेकिन दोनों तकरीरों को अगर आप एक तरह से देखें तो दोनों ने बिल्कुल ही मतलब स्ट्रीट लेवल की डिस्कोर्स थी, लोगों को पसंद तो आ जाएंगे कि मजाहिया तौर पर, लेकिन इंडिया का जो स्टैचर है उस स्टैचर की ये तकरीर नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जो सुषमा स्वराज ने दो तीन बातें जो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हुए की हैं, वो स्ट्रीट लेवल पर उनके सपोर्टर्स को, बीजेपी के सपोर्टर्स को, इंडियन नेशनलिस्ट को जरूर पसंद आएगी कि इंडिया इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाता है और पाकिस्तान टेररिस्ट पैदा करता है। लेकिन अब इंडिया एक ब्रिक नेशन बन गया है, इंडिया दुनिया के तीन बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, 15-20 मुल्कों में से अहम है, इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, तो उस स्टैचर की तकरीर नहीं थी कि ग्लोबल विजन की कोई इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बस यही कि पाकिस्तान को टेररिस्ट बना दे, पाकिस्तान को टेररिस्ट बना दे।
तो ये बताइए कि आपको सिर्फ भारत पाकिस्तान का जिक्र करना या फिर भारत इंजीनियर बनाता है, पाकिस्तान टेररिस्ट बनाता है, ग्लोबल स्तर पर यानी कि विश्व स्तर पर सुषमा स्वराज के भाषण की कोई प्रासंगिकता देख पाते हैं आप या कितना अपील करती हैं? ये
इंडियन डायस्पोरा को अपील करेगी और इंडिया के जो नेशनलिस्ट, बहुत ही स्ट्रांग नेशनलिस्ट इंडियन सिटीजन से, उनको जरूर अपील करेगी, बस उससे ज्यादा ये इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से बहुत छोटा मुल्क है लेकिन पाकिस्तान की भी काफी बड़ी डायस्पोरा है, उनके भी बहुत सारे इंजीनियर्स, उनके भी डॉक्टर्स दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, तो दूसरे मुल्कों को मतलब ये बात उतनी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होती। अगर इंडिया कुछ अपनी तरफ से ऐसी प्रोग्राम पेश करता, ऐसी स्ट्रेटजी पेश करता कि जो ग्लोबल मसाइल है या क्लाइमेट चेंज का मसला हो या टेररिज्म के लिए कोई ऐसी पॉजिटिव बात अगर कहती तो इंडिया का स्टैचर ज़रूर बढ़ जाता। जैसा जैसे अमेरिका का पावर कम होते जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर्स अमेरिका को इंटरनेशनल स्टेज से विड्रॉ भी कर रहे हैं और अमेरिका का जो प्रेस्टीज है उसको ख़त्म भी कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त एक ग्लोबल लीडरशिप वैक्यूम बन रही है और अगर इंडिया अपने आप को उसमें इसका फ़ायदा नहीं उठाएगा तो चाइना से बहुत पीछे रह जाएगा।
सुषमा स्वराज के पाकिस्तान पर हमले और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण का विश्लेषण कर रहे थे अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छेड़खानी के खिलाफ छात्राओं का आंदोलन उग्र हो चला है। शनिवार देर शाम यानी कि कल देर शाम पुलिस ने लाठीचार्ज करके छात्राओं को धरना स्थल से हटाया। इसके बाद पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई हैं, कई वाहनों को आग लगा दी गई है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सीधे चलते हैं बनारस जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी समीर आत्मन मिश्र। समीर, सबसे पहले तो यही बताइए कि इस समय क्या स्थिति है और किस तरह से ये आंदोलन जो चल रहा था छात्राओं का, ये उग्र हुआ?
मोहनलाल जी, तुरंत की स्थिति बताएं तो आप ये जान लीजिए कि जो पूरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परिसर है, बीएचयू परिसर, वो दूर से कोई देखे तो लगेगा कि ये लग रहा है कि कोई पुलिस छावनी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएसी के जवान वहां पे तैनात है। हालांकि जो देर रात छात्रों पे, छात्राओं पे जो जिस तरह से कार्रवाई हुई पुलिस की, उसके बाद से ये आंदोलन उग्र हो गया और उग्रता के साथ छात्राएं धरने पर बैठी हुई हैं अभी भी विश्वविद्यालय के गेट के बाहर, जहां वो पिछले दो दिन से धरने पे थी। और आपको ये बताएं कि वहाँ जो स्थिति गंभीर हुई कल लगभग 9 बजे 10 बजे तक वहाँ धरना स्थल पर हम खुद भी थे, जो वहाँ पे चीजें देखने को मिल रही थी उससे ये लग रहा था कि देर सवेर ये स्थिति बनने वाली है, क्योंकि आंदोलन करने वाली जो छात्राएं हैं उनमें अधिकांश अंडर ग्रेजुएट की छात्राएं हैं, बीए बीएससी बीकॉम की छात्राएं हैं, उनकी समस्या अपनी है, जो छेड़खानी को लेकर के जो विरोध शुरू हुआ था एक छात्रा के साथ जो छेड़खानी हुई थी, छात्राओं का कहना था कि ये आए दिन की घटना है और विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी बात सुनता नहीं है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन उस धरने में और भी तमाम छात्र भी उनका समर्थन कर रहे थे, हाँ। कुछ पूरा छात्राएं जो पुरानी विश्वविद्यालय की छात्राएं रह चुकी हैं, ऐसी महिलाएं भी वहां पे दिखी, लेकिन उनके बीच में छात्राओं को ये आशंका थी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ हिंसक कार्रवाई हो, ऐसी गतिविधियां हो, अराजक तत्व तो यहाँ पे शामिल है जो पुलिस को कुछ न कुछ कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। देर रात में कैसे वाइस चांसलर देर रात में तो मिलेंगे नहीं, अगर मिलने का कोई कार्यक्रम तय होता तब तो ठीक है, लेकिन वहां पे जो लोग गए उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये कौन से तत्व थे, ये वास्तव में वही लोग थे जो छात्राओं के धरना प्रदर्शन में उनका साथ दे रहे हैं या फिर कोई और थे। बहरहाल जब पुलिस ने वहां रोकने की कोशिश की तो झड़पें हुई और पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। ये भी सुनने में आया कि छात्रावासों से बम धमाके सुने गए, जो बम फेंके गए किसने फेंका अभी तक पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। छात्रावासों की जम करके तलाशी ली गई, देर रात में ही कई लोगों को चोटें आई, कई छात्र छात्राएं
मतलब तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं, कुछ वाहनों को आग लगा दी गई हैं। समीर, जो धरने पर छात्राएं बैठी थीं उनसे आपकी कल शाम तक तो स्थितियां वैसी नहीं थी, जो कि देर रात में थोड़ी सी खराब हुई और हिंसक वारदातें हुई, हिंसा की घटनाएं हुई, पुलिस से झड़पें हुई। जो आपसे धरने पर जो छात्राएं बैठी थी उनसे आपकी बात हुई होगी, तो उन्होंने क्या कहा आपसे?
जी मोहनलाल जी, वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि छात्राओं का बस यही कहना था कि एक तो उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए और ये गारंटी विश्वविद्यालय प्रशासन ले और कोई नहीं, दूसरे उनकी एक मांग थी कि कुलपति उनके पास खुद आकर के और वार्ता करें, क्योंकि कुलपति और प्रॉक्टर यानी जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको लेकर के बहुत गुस्सा था छात्राओं में, और कई छात्राओं से वहां हमने बात की, उसको आप सुन भी सकते हैं कि क्या कहना था, किस तरह का आक्रोश था छात्राओं में।
मैं वाराणसी में हूँ, बनारस में, और ये जो जगह है काशी हिंदू विश्वविद्यालय बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, देश ही नहीं दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में गिनती होती है। यहाँ मेरे साथ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हैं, अपनी कुछ मांगों को लेकर के धरने पर बैठी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं, पूरी रात ये लोग यहाँ पे डटी हुई थी। क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम अनीता है।
क्या दिक्कत आ पड़ी कि आप लोगों को इस तरह से धरने पे बैठना पड़ रहा है सारी सारी रात जग करके?
सर एक घटना 21 तारीख की है, एक लड़की जा रही थी और कुछ लड़कों ने उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया और उस वक्त प्रशासन वहां पर मौजूद था और उस लड़की ने वहां पर कंप्लेंट की, लेकिन प्रशासन द्वारा उसकी बातों को इग्नोर कर दिया गया और उल्टा ये कहा गया कि तुम रात में इस टाइम क्या घूम रही हो, बेचू के अंदर 5 बजे के बाद रात मान ली जाती है।
ये एक दिन की कोई बात नहीं, यहाँ बैठी जितनी भी लड़कियाँ हैं वो इस तरह के हरासमेंट हर रोज सहती है, हर रोज, मगर सेफ्टी के नाम पर यहाँ लड़कियों को कुछ प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। और जो हमारी डिमांड्स है वो कोई ऐसे डिमांड्स नहीं है जिनको फुलफिल नहीं किया जा सकता है। UGC की गाइडलाइन जो MHRD के थ्रू प्रोवाइडेड है, वो सारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारी जितनी भी डिमांड्स है सब उसके अंडर ही है।
क्यों प्रशासन आपका चुप है? ये कह रही है कि प्रशासन चुप है
जी। पूरे हिंदुस्तान की ये प्रॉब्लम है, लड़कियां कहीं सेफ नहीं है।
कि ये जो अभी तात्कालिक दिक्कत है इसकी शिकायत आप लोगों ने किससे की थी?
हम लोगों ने यहाँ पे SDM आई थी, उनसे हम लोग शिकायत किए थे।
उनके समर्थन में बड़ी संख्या में यहाँ छात्र भी बैठे हुए हैं।
जो समर्थन में यहाँ पे छात्र हैं, दरअसल ये पूरा मसला जो है वो छात्रों छात्राओं की सिक्योरिटी का है, छात्रों के तमाम इश्यूज हैं। हाँ क्या कह रहे हैं?
हाँ सर, हम ये कह रहे हैं कि VC यहाँ तक अभी तक क्यों नहीं है, क्या कारण है?
VC का आना बहुत बड़ा मुद्दा है या आप लोगों की जो समस्या?
VC का आना बड़ा मुद्दा वो बहुत बड़ा मुद्दा है।
पहले तो प्रॉक्टर को बदलना चाहिए, प्रॉक्टर बोला लड़का 5:30 बजे का घूम नहीं सकती, उन लोग के पिताजी का घर है क्या? लड़कियों को माने कभी भी घूमे, लड़की घूमे के बारे में चलेगा? VC आए और लड़कों को खुजवाए, निलंबित करे,
तो इन छात्राओं का और इनके साथ बैठे छात्रों का ये कहना है कि जब तक वाइस चांसलर यानी विश्वविद्यालय के कुलपति आकर के इनकी मांगों को नहीं मांगते हैं तब तक ये धरने पर नहीं उठेंगे। अब देखना ये है कि छात्राओं की मांगों के आगे विश्वविद्यालय प्रशासन झुकता है या फिर छात्राएं झुकती हैं या फिर बीच का कोई रास्ता निकाला जाता है। समीर आत्मज मिश्र, BBC वाराणसी।
हमने आपकी ये बातचीत सुनी और समीर, निश्चित तौर पर आज कुछ और बातें आगे होंगी कि धरने का क्या होता है, प्रदर्शन का क्या होता है, क्या मांगे मानी जाती हैं। समीर, अखबार इस समय आपके पास होंगे जो कि बनारस से छपे हुए होंगे, अखबार क्या कह रहे हैं आज के?
जी मौलाली, वही अब जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, देर रात जो घटनाएं हुई हैं अखबारों में वो कुछ जगहों पे दिखाई पड़ रही है प्रमुखता से। अमर उजाला ने उसको लीड खबर बनाया है, लिखता है सुलग उठा BHU, छेड़खानी के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद आगजनी, बमबाजी, फायरिंग, पुलिस ने आंसू गैस से घोले दागे और कल से दशहरे की छुट्टी, प्रशासन ने छुट्टी कर दी है, 2 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय को बंद कर दिया है, इस बात को भी अखबार ने लिखा है। हिंदुस्तान लिखता है BHU में छात्र भड़के, उपद्रव के बाद हुई हवाई फायरिंग। अखबारों ने तमाम तस्वीरें भी छापी हुई हैं जो कि कल की देर रात के घटनाक्रम को बयां कर रही हैं। दैनिक जागरण लिखता है जल उठा BHU, आधी रात के आसपास गोलीबारी, आंसू गैस, पथराव, लाठीचार्ज, स्थिति भयावह। दैनिक जागरण ने पूरा अंदर में एक पेज में पूरी इस घटनाक्रम को विश्लेषित किया है। अखबार लिखता है कि जारी रही जंग, भारी बवाल के बाद BHU बंद। और एक बड़ी दिलचस्प बात लिख रहा है अखबार दैनिक जागरण, एक शीर्षक दिया है कौन कर रहा है साजिश। अखबार में ये इस बात को लिखा है कि सवाल उठ रहा है कि ये सारी राजनीति कौन कर रहा है। अखबार का दावा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ये जानता है कि कुलपति का विरोध कर रही छात्राओं के समानांतर नारे लग रहे हैं कुलपति के समर्थन में, और छात्राओं पे जो फप्पियां कसी जा रही हैं, उन पर अश्लील की पड़ियां बीच बीच में की जा रही हैं। अखबार का दावा है कि प्रशासन ऐसे लोगों को जानता है लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता।
बहुत बहुत शुक्रिया समीर आत्मज मिश्र। और कार्यक्रम में अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राहत राशि के तौर पर न मात्र पैसे का मुआवजा मिला है, वो भी सीहोर जिले में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। पेश है भोपाल से शुरह नियाज़ी की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 18 फरवरी को सीहोर जिले के शेरपुर में एक बड़े किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत के वक्त यहां के किसानों को यह महसूस हुआ था कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी और उन्हें फसल के खराब होने पर भी घाटा नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन तकरीबन 1.5 साल बाद अब वो उसी योजना में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जब किसी किसान को 4.70 रुपये तो किसी को 17 रुपये मुआवजे के तौर पर हाथ लगे हैं। किसानों में अब भारी गुस्सा देखा जा रहा है।
3 एकड़ जमीन थी, सोयाबीन की फसल सब नष्ट हो गई। 2016 का बीमा ये सरकार ने बहुत कम राशि दी है, 20 रुपया 20 पैसा।
3 साल 4 साल से फसल पिट रही है, 1 साल भी पानी नहीं मिला, पानी मिला तो फसल थोड़ी बहुत हुई थी, वो भी गई आई जी। काई की राशि साहब 94 रुपये 96 पैसे, 0 के बराबर है।
वहीं सरकार इस मामले की जांच कराने की बात कह रही है। जिले के प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह का कहना है कि सरकार ने फैसला किया था कि किसान चाहे कितना भी छोटा हो उसे कम से कम 1,000 रुपये मुआवजे के तौर पर मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि इसे देखा जाएगा कि किस तरह से आकलन किया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने कह दिया था कि कितना ही छोटा किसान हो 1,000 से कम किसी किसान को राशि नहीं देगी। इसी तरह बीमा कंपनियों को भी मीटिंग जब होगी इस बात को रखा जाएगा कि आप बीमा दो तो कम से कम वो इतना तो हो, ये मजाक ना बने। इसलिए हम लोग इस बात को पूरी ताकत के साथ, चूंकि बीमा कंपनियां उनके तरफ से आकलन कर रही है, लेकिन इस बात को हम उन तक पहुँचाएं।
किसान इस मुआवजे को एक तरह से मजाक मान रहे हैं। जिले के तिलरिया गांव में 52 किसानों को मुआवजा मिला है और उन्हें कुल 3,061.50 रुपये बीमा रकम के तौर पर मिले हैं। यही हाल दूसरे गांव का भी है। जिले में पिछले 3 महीनों में 12 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी जिले से आते हैं। जब यहां किसानों को मिले मुआवजे का ये हाल है तो प्रदेश के दूसरे स्थानों की कल्पना की जा सकती है।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
BBC हिंदी।
भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट आप सुन रहे थे। और इसके बाद जर्मनी में आज चुनाव होने जा रहे हैं। एंगेला मर्केल के लिए ये चौथी बार है जब वो चांसलर पद के लिए मैदान में हैं। प्रवासी संकट न सिर्फ जर्मनी बल्कि यूरोप के लिए भी बड़ी चुनौती की तरह उभरा है और इसमें एंगेला मर्केल शरण देने में आगे रहीं। हरिताकांत पाल ने जर्मनी स्थित पत्रकार अनवर जमाल अशरफ से बात की और पूछा कि चुनाव लेकर क्या हलचल है।
मर्केल इतिहास की ऐसी दहलीज पर अब खड़ी हो चुकी हैं जहां से वो दुनिया की सबसे कद्दावर महिला नेता के तौर पर खड़ी हो चुकी हैं वहां पर, और इसमें उनके सामने जो इस बार का चुनाव है वो काफी आसान हो गया है आखिर के कुछ दिनों में। और यहाँ के जो सर्वे बता रहे हैं कि एंगेला मर्केल के लिए एक आसान विजय की तरफ वो बढ़ रही हैं। बहुत ही ताज्जुब की बात है ये हरिता, क्योंकि हाल के दिनों में पिछले दो साल में खास तौर पर जब हमने रेफ्यूजी क्राइसिस को यहाँ पर पनपते देखा था और लोगों के अंदर जिस तरह से गहरा असंतोष था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मर्केल शायद चौथी बार अपना चुनाव न जीत पाए, लेकिन ऐसा लगता है धीरे धीरे खास तौर पर दो तीन महीने के अंदर कि मर्केल का वो जो मुद्दा था रिफ्यूजी वाला वो काफी नीचे चला गया और दूसरे मुद्दे ऊपर आ गए। तो मर्केल की जीत के कयास यहां पर मीडिया भी लगा रही है, तमाम सर्वे कह रहे हैं कि मर्केल चौथी बार जर्मनी की चांसलर बनने वाली हैं।
प्रवासी संकट यूरोप के लिए एक बड़ा मुद्दा था और जर्मनी के लिए भी, इसका क्या असर दिखेगा?
जैसा कि मैंने पहले कहा हरिता कि ये रिफ्यूजी क्राइसिस जो है मर्केल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंटरनेशनली हम देखते हैं कि उनको एक बहुत बड़ा आइडियल बना दिया गया है और नोबेल प्राइज के लिए वो लगातार दो तीन सालों से उनको नॉमिनेट किया जा रहा है, लेकिन जर्मनी के अंदर लोगों के अंदर ये असंतोष जरूर रहा है कि रिफ्यूजीज के आने के बाद जर्मन समाज में क्राइम बढ़ा है, उनके ऊपर पैसे लग रहे हैं, और एक आम जर्मन से आप बात कीजिए तो उनको लगता है कि ये रेफ्यूजी उनके ऊपर एक एडिशनल बर्डन है जिसकी जरूरत नहीं थी। और इसमें जो दूसरी बात है वो ये कि जर्मनी जो है यूरोप का सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर देश है, आर्थिक तौर पर भी सबसे अहम देश है। जर्मनी में भी हाल के सालों में खास तौर पर पिछले 4-5 साल में एक फार राइट पार्टी जिसको AFD अल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड या अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी कहते हैं, उसका उभार हुआ है काफी तेजी से, और वो एक ऐसी पार्टी है जो कि रेफ्यूजीज के खिलाफ है, वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो कंबाइंड यूरोप के खिलाफ है ये पार्टी, और इसका उभार इतनी तेजी से हुआ है रिता कि यहाँ के 16 राज्यों में से अब मेरे ख्याल से वो 11 या 12 राज्यों के संसद में असेंबली में वो पहुंच चुकी है।
हरिताकांत पाल बात कर रही थी जर्मनी स्थित पत्रकार अनवर जमाल अशरफ से। और अब कार्यक्रम में बात करेंगे खेल समाचारों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल मिश्रित युगल में भी भारत की चुनौती टूट गई। भारत के प्रणव जैरी चोपड़ा और एनसीके रेड्डी की जोड़ी कल सेमीफाइनल में मेजबान जापान के टाकुरो होकी और सायाका हिरोतो के हाथों 1 घंटे तक चले कड़े संघर्ष के बाद 14-21, 21-15, 21-19 से हार गई। उधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज इंदौर में 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का 3रा मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया टीम इससे पहले पहला 1 दिवसीय डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 26 रन से और दूसरा 1 दिवसीय 50 रन से हार चुकी है, इसलिए उस पर सीरीज गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। पिछले मुकाबले में हालांकि भारतीय टीम कोलकाता में पूरे 50 ओवर खेलकर 252 रन पर सिमट गई थी और एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट पर 106 रन था, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ऐसा लड़खड़ाई कि वो 202 रन ही बना सकी। भारत के चाइना बैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने मैथ्यू वेड, एस्टन एगर और पैट कमिंस के विकेट लगातार 3 गेंदों पर लेकर हैट्रिक पूरी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हार के दरवाजे तक पहुँचा दिया। कुलदीप यादव का मानना है कि भारतीय गेंदबाजों की नजरें डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के विकेट पर रहती है।
हमारा यही प्लान रहता है कि वार्नर को जल्दी से जल्दी आउट किया जाए जब वो बैटिंग करने आता है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर जो गेम चेंज कर देता है कहीं से भी। स्टीव स्मिथ भी वैसे ही है कि अगर वो लोग 30-40 ओवर्स भी खेलते हैं तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर में रहती है, क्योंकि वो कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं और स्कोर लंबा कर सकते हैं।
ऐसे में आज इंदौर में भारत जीत हासिल करने के साथ ही सीरीज में अजय बढ़त लेने के इरादे से उतरेगा। वहीं ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो ने कहा है कि भारत में अगले महीने होने वाला अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट कई युवा खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।
खेल की खबरें भी आपने सुन ली और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छेड़खानी के खिलाफ छात्राओं का आंदोलन उग्र हो गया है। शनिवार देर शाम पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को धरना स्थल से हटाया, जिसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को निशाने पर लिया है। अमरीकी वायुसेना ने उत्तर कोरिया के पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमानों की निगरानी में बमबरसक विमान B-1B उड़ाए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री योंग हो ने राष्ट्रपति ट्रंप को मानसिक रूप से बीमार कहा है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें और bbchindi.com पर आते रहें। नमस्कार।